ओम ओम ओम। आदि गुरु भगवान शंकराचार्य विरचित वेदांत डिंडिमा नामक स्तोत्र के आधार पर अद्वैत वेदांत के बारे में विचार चल रहा है। अभ्यास के लिए 20वां श्लोक है। कर्मिणो विनिवर्तन्ते निवर्तन्ते उपासकः ज्ञानिनो न निवर्तन्ते इति वेदांत डिंडिमा। परोक्षा सत्फलं कर्म ज्ञानं प्रत्यक्ष सत्फलं ज्ञानमेवाभ्यसित्तस्मात् इति वेदांत डिंडिमा। वृथाश्रमोऽयं विदुषां वृथायं कर्मिणां श्रमः यदि न ब्रह्मविज्ञानम् इति वेदांत डिंडिमः। अलम् यागैरलम् योगै अलम् भुक्तैः अलम् धनैः परस्मिन् ब्रह्मणि ज्ञाते इति वेदांत डिंडिमा। अलम् वेदैरलम् शास्त्रैः अलम् स्मृति पुराणकैः परमात्मनि विज्ञाते इति वेदांत डिंडिमः। नर्चान यजुसार्थोऽस्ति न साम्नार्थोऽस्ति कश्चन ज्ञाते ब्रह्मात्मविज्ञाने इति वेदांत डिंडिमः। कर्माणि चित्तशुद्ध्यर्थम् ऐकाग्र्यार्थम् उपासना मोक्ष्यार्थम् ब्रह्मविज्ञानम् इति वेदांत डिंडिमः। तो यथार्थ जो है वही शंकराचार्य जी इन स्तोत्रों के माध्यम से समझा रहे हैं। बहुत से प्रश्न करते हैं कि महाराज मरने के बाद आत्मा का क्या होगा, फिर जन्म लेता है कि नहीं, जन्म लेता है तो किस रूप में कहां कैसे जन्म लेता है। अद्वैत वेदांत का कहना है कि तुम जन्म लेना चाहो तो जन्म ले सकते हो, कर्म की थियरी एक ऐसी है, उसके आधार पर आपका पुनर्जन्म निर्धारित होता है। पुनर्जन्म कर्म के बिना पुनर्जन्म संभव नहीं है। केवल कर्म भी नहीं, कर्म के साथ दो और जुड़ता है, वासना और अज्ञान। उपनिषद ने ये बात स्पष्ट कर दिया है योनिमन्ने प्रपद्यन्ते शरीरत्वाय देहिनम् स्थाणुमन्ने अनुसंयन्ति यथा कर्म यथा श्रुतम्। कुछ जीव अर्थात मनुष्य मरने के बाद गर्भवास में फिर दोबारे पहुंच जाता है। योनिमन्ने प्रपद्यन्ते, उपस्थ इंद्रिय के माध्यम से वह गर्भाशय में पहुंचता है। किस लिए जाता है? तो शरीरत्वाय कल्पते, शरीर प्राप्ति के लिए जाता है। उसी को नादवंश कहते हैं, बिंदुवंश कहते हैं। योनि मन ने प्रपद्यन्ते माने बिंदु, रजवीर्य का सम्मिश्रण जो जल बूंद है बिंदु, वह गर्भाशय में पहुंचता है, उसी से फिर शरीर धारण होता है। स्थाणुमन ने अनुसंयन्ति, तो कुछ जीव गर्भाशय में तो नहीं पहुंचते और देह आदि की प्राप्ति नहीं कर पाते, वे लोग स्थाणु योनि को प्राप्त करते हैं। स्थाणु माने वृक्ष, पेड़। कैसे निर्धारण करें कि कौन जीव शरीर के लिए गर्भाशय में जाता है और कौन जीव वृक्ष लता आदि बनकर पैदा होते हैं? तो ये तुम और हम निश्चय नहीं कर पाएंगे। यथा कर्म यथा श्रुतम्, मनुष्य जन्म में मनुष्य योनि में रहते समय उसने जिस प्रकार का कर्म किया हुआ है, उन कर्मों के आधार पर उसका पुनर्जन्म निर्धारित होता है, निर्धारण होता है पुनर्जन्म। और केवल कर्म के आधार पर नहीं, कर्म के साथ साथ वासना, कर्म फल भोग वासना, और ये कर्म और वासना ये दोनों का आधार अविद्या। अज्ञान, कर्म और वासना, ये तीन के माध्यम से जीवात्मा का पुनर्जन्म कहां और कैसा होगा ये निर्धारण होता है। इसका निर्धारण कौन करेगा? तो ये निर्धारण करता परमात्मा है, ईश्वर है। उसने एक व्यवस्था बना रखी है कि इसी व्यवस्था के अंतर्गत सब जीवात्मा पुनर्जन्म को प्राप्त करते हैं। और यदि तुम्हें पुनर्जन्म की इच्छा नहीं है, यदि कोई जिज्ञासु कोई मुमुक्षु मुक्त होना चाहता है फिर जन्मना नहीं चाहता है, वो क्या करे महाराज? वो तो उसके लिए शंकराचार्य जी ने या वेदांत दर्शन ने आचार्यों ने गुरुओं ने भगवान ने एक व्यवस्था मिला दी है। ज्ञानिनो न निवर्तन्ते, तुम फिर जीवात्मा बनकर संसार में आना नहीं चाहते हो तो आत्मज्ञान ब्रह्मज्ञान का आश्रय लो। ब्रह्मज्ञान के आश्रय लेने से क्या होगा कि तुम्हें ब्रह्मज्ञान अर्थात ब्रह्म और आत्मा का ऐक्य ज्ञान होगा। ब्रह्म और आत्मा, जीवात्मा और परमात्मा, ब्रह्म और आत्मा माने जीवात्मा और परमात्मा की ऐक्य ज्ञान, दोनों एक है। ये ज्ञान अपरोक्ष होते ही पुनर्जन्म के जो तीन कारण हैं वो नष्ट हो जाएंगे। पुनर्जन्म का पहला कारण अविद्या अज्ञान, मूलाविद्या तुलाविद्या। पुनर्जन्म का दूसरा कारण शुभ अशुभ मिश्र कर्म, व्याख्या हो चुकी है स्वाध्याय में भी, आप लोगों ने इस बात को सुना है पंचदशी में। अशुक्ल कृष्ण योगिनः कर्म त्रिविधम इतरेषां, योगियों का न पुण्य होता है न पाप होता है कर्मों में, कर्म करते हैं लेकिन उस कर्म से न सत्कर्म पुण्य कर्म होगा पुनर्जन्म का हेतु, न असत्कर्म होगा पुनर्जन्म का हेतु, न मिश्र कर्म होगा। और त्रिविधम इतरेषा, अन्य जो साधारण जीव हैं उन लोगों के ये तीन प्रकार के कर्म होते हैं। और यही तीन कर्म ही उसके पुनर्जन्म को निर्धारण करता है। पुनर्जन्म निर्धारण के लिए पहला कारण है अविद्या, दूसरा है कर्म। और पुनर्जन्म को निर्धारण करने का तीसरा कारण है वासना, उसके अंतकरण में किस प्रकार की वासनाएं हैं। उसी वासना को भगवान श्री कृष्ण ने इस श्लोक के द्वारा संकेत किया है, यम यम वापि स्मरण भावन त्यजे तेन्ते कलेवरम तम तमे वैति कौन्तेय सदा तद्भाव भावितम। हे अर्जुन, शरीर छोड़ने वाला जीवात्मा शरीर छोड़ते समय यम यम भावम स्मरण, उसके चित्त में जो जो वासनाएं उद्भूत हो रही हो, जो जो वासनाएं काम कर रही हो, और उसी वासना के चलते वह यदि वासना जगते समय में यदि वह शरीर छोड़ रहा हो तो चित्त में स्फुरित हुए हुए वासना के अनुरूप ही उसका पुनर्जन्म भी निर्धारण होगा। इसीलिए हे अर्जुन, तुम यदि पुनर्जन्म को नहीं चाहते हो, क्योंकि पुनर्जन्म का आधार यह है, सिद्धांत यह है, हेतु यह है, कारण यह है, यदि तुम पुनर्जन्म को नहीं चाहते हो तो क्या करें महाराज? अंतकाले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम्। तो प्राणांत काल में तुम यदि मेरे स्मरण करते हुए शरीर का परित्याग करते हो तो उसका परिणाम यह होगा कि वह मेरे स्मरण करते हुए परित्याग करने के कारण वह मदभावम, वो मेरे ही भाव को प्राप्त होगा। मेरे भाव को प्राप्त होगा मतलब दोबारे जीव भाव की प्राप्ति उसको नहीं होगी। ये तमाम बात गीता में स्पष्ट है। भिद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशयाः क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टि परावरे, मुंडकादि उपनिषद। पर अपि अवरः यस्मात् स परावर दृष्टि साक्षात् अनुभूते सति। जिसको हम परह कहते हैं, वह भी जिसके सामने क्षुद्र हो जाता है, तुच्छ हो जाता है, मिथ्या हो जाता है। हम लोगों की सामान्य आस्था, विश्वास, श्रद्धा यही है कि समस्त मनुष्यों में से, अन्य साधारण प्राणियों में से मनुष्य श्रेष्ठ है। हम लोगों के सभी की मान्यता तो यही है ना? साधारण पशु आदि, पक्षी आदि, कीट पतंग आदियों से तो मनुष्य उत्तम है, पर है, श्रेष्ठ है। बड़े भाग मान सतन भावा, लब्ध्वा कथन चिन्नर जन्म दुर्लभम, शंकराचार्य जी विवेक चूड़ामणि में कहते हैं। कथन चित किसी पूर्व पूर्व जन्म और शुभ वासनाओं के चलते उसने, इस जीव ने मनुष्य जन्म प्राप्त किया। एक कथनचित ये दुर्लभता को बताता है। और कह दिया खुद ही, लब्ध्वा कथनचिन नर जन्म दुर्लभम, ततोपि पुंस्त्वं श्रुति पार दर्शनम। उसमें भी शास्त्र अध्ययन करने की क्षमता, श्रुति पार दर्शनम, वेद वेदांत का श्रवण मनन आदि करने की योग्यता, सामर्थ्यता, ये सब उसको प्राप्त हुआ है। बड़े भाग मानस तन पावा, सुरत दुर्लभ सद ग्रंथ निगावा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाही न जेहि परलोक समार। ये सब प्राप्त होने पर भी जिसने इन साधनों का प्रयोग करके कि मुझे फिर दोबारे संसार में जीव बनकर पैदा होना नहीं है, यह निश्चय करके उन साधनों का प्रयोग करे, तस्मिन् दृष्टि परावरे, तो समग्र जीवों से मनुष्य जीवन पर है, श्रेष्ठ है, उत्तम है। मनुष्यों से सामान्य व्यक्तियों की मान्यता यह है हम मनुष्यों से देवता पर हैं, उत्तम है, श्रेष्ठ है। सामान्य मनुष्यों की मान्यता तो यही ना है, देवता हमसे उत्तम है, श्रेष्ठ है। देवताओं से भी उत्तम श्रेष्ठ ब्रह्मा है। अब कुछ लोग कहते हैं कि ब्रह्मा से श्रेष्ठ विष्णु है, विष्णु से श्रेष्ठ शिव है। कुछ लोग कहते हैं कि ब्रह्मा से श्रेष्ठ शिव है, शिव से श्रेष्ठ विष्णु है। तुम किसी को भी बना दो श्रेष्ठ भाई, है तुम्हारे अपने आस्था है, तुम स्वतंत्र हो। विष्णु को बड़ा बनाओ कि शिवजी को बड़ा बनाओ, तो तुम स्वतंत्र हो। शिवजी बड़े हैं, विष्णु छोटे हैं, इसलिए हमने शिव को बड़ा माना है और विष्णु छोटा माना है, ऐसा नहीं है। तुमने बड़ा माना तो वो बड़े हो गए हैं। तुम शिव को बड़ा मानोगे तो शिव बड़े हो जाएंगे तुम्हारे लिए। तुम विष्णु को बड़ा मानोगे तो विष्णु बड़े हो जाएंगे तुम्हारे लिए। वास्तव में ये तीन में कोई बड़ा नहीं है, कोई छोटा नहीं है। कोई बड़ा नहीं, कोई छोटा नहीं। तुम स्वप्न देख रहे हो, स्वप्न में तुमने शादी कर ली। शादी स्वप्न में किया था कि जागृत में? भाई तुम बोलो, सचमुच में शादी किया था कि जागृत में किया है कि स्वप्न में? जागृत में। मोहनिशा सवसो वनिहारा, तुलसीदास जी तो कहते हैं सारा संसारी लोग मोहरूपी निद्रा में सोए हुए हैं, उसी समय शादी किया है। और कहां से जागृत में शादी किया तुमने बोलो? तुम झूठ बोल रहे हो कि तुलसीदास जी झूठ बोल रहे हैं? तुम कहते हो हम जागृत में शादी किया, तुलसीदास जी कहते हैं निद्रा में शादी किया है, स्वप्न में शादी किया है। प्रमाण है, मोह निशा सबक सोहनी आ रहा। चलो जब भी किया हो तो किया तो सही ना। और हमारे जैसे क्या करेंगे, जागृत में करेंगे कि स्वप्न में बोलो? हमारे जैसे को तो शादी करनी हो तो स्वप्न में ही होगी, जागृत में तो होगी नहीं। होगी सन्यासी, सन्यासी की शादी जागृत में होगी, लेकिन हजार कोशिश करो कि स्वप्न में शादी न हो तो ये संभव नहीं है, वो हो जाएगी। कुन जन्म के किस किस जन्म की वासना जग जाए स्वप्न में, कोई ठिकाना नहीं है, वो भरोसा नहीं है। लाखों करोड़ों जन्म अनंत जन्मों के संस्कार चित्त में पड़े हुए हैं और सोते समय में वही संस्कार में उद्भूत होना है, तो तुम्हारे कहने से मैं स्वप्न में भी शादी नहीं करूंगा, रुकेगी तुम्हारी शादी? बोलो, हमारी तो रुकी नहीं है भाई। और तुम्हारी रुकती हो तो रोक लो भाई, स्वप्न तुम्हारे हाथ में नहीं है बेटा। मैं ये देखना चाहूं तो देखूं, नहीं तो नहीं देखूं। स्वप्न तो वासना से चलता है, संस्कारों से चलता है, जन्म जन्मांतर के। तो उस व्यक्ति ने स्वप्न देख लिए, स्वप्न में शादी कर ली। सामान्य एक नियम बना रखा है, सामाजिक नियम आप लोगों ने, कि लड़की लड़के से छोटा ही होना चाहिए, छोटी ही होनी चाहिए। ऐसी मान्यता है कि नहीं आपके समाज में? लड़कों की उम्र कुछ एक दो साल ज्यादा हो, लड़की की उम्र एक दो कम हो तो चलेगा। लेकिन तुम्हारे समाज स्वीकार नहीं करता है कि लड़की एक दो साल से बड़ी हो और लड़का एक दो साल छोटा हो। बराबर भी चलता है, छोटी लड़की भी चलता है। सामान्यतया यही मान्यता समाज में है। शायद इसी मान्यता के आधार पर तुमने स्वप्न में शादी कर ली तो अपने से बड़ी लड़की से शादी करोगे कि छोटी से? बोलो ना। चलो, वहां तो वो रोल नहीं है। अब तुम एक बेटा पैदा करोगे स्वप्न में, वो तुम्हारे से बड़ा होगा कि छोटा होगा? है उम्र में तुमसे बड़ा होगा? तुमसे पैदा होने वाला बेटा तो उम्र में तुमसे बड़ा तो किसी हालत में नहीं हो सकता है। लेकिन स्वप्न में न पत्नी बड़ी है, न तुम बड़े हो, न बेटा बड़ा है, न बेटा छोटा है, न तुम बड़े हो, क्योंकि ये सब एक ही मुहूर्त में सारी कल्पना से तैयार हुए हैं। है कि नहीं? बोलो। फिर भी स्वप्न काल में तुम्हें ये भ्रांति होती है कि नहीं? तुम जब स्वप्न देखते हो तो अपने ही बेटे से मैं बड़ा हूं ये लगता है कि नहीं? वास्तव में स्वप्न काल में तुम अपने बेटे से बड़े नहीं हो। बिस्तर में सोया हुआ शरीर की उम्र अलग है, स्वप्न देखने वाले व्यक्ति की उम्र अलग है। वहां पर ध्यान देना। हाँ, खाट में सोया हुआ जो शरीर है वो 50 वर्ष पहले जब पैदा हुआ हो सकता है, 70 वर्ष पहले पैदा हुआ हो सकता है। हमारे मधुसूदन तिजोरी वाले का शरीर तो कितने वर्ष पहले पैदा हुआ है? 97 वर्ष पहले पैदा हुआ। बोलो, हो सकता है। लेकिन जब वो स्वप्न देखेंगे, वो स्वप्न देखते समय का जो शरीर होगा वो उसी क्षण पैदा हुआ होगा। क्या 97 वर्ष पहले पैदा हुआ होगा वो स्वप्न में वो शरीर? नहीं। इसलिए ब्रह्मा विष्णु महेश इंद्र ये कौन बड़े कौन छोटे? भाई सभी बराबर हैं। तो हम सामान्यतया शास्त्र ने, भक्तों ने भावना से जिसको सबसे बड़ा कहा है वह भी जिसके सामने तुच्छ हो जाता है, क्षुद्र हो जाता है, छोटा होता है। पर अपि अवरा, बड़ा भी छोटा हो जाता है जिसके सामने। उसको जब अनुभव करते हो किसके सामने, तो तुम और ब्रह्म की एकता का तुम अनुभव करोगे तो तुमसे बड़ा कोई होगा ही नहीं। न शिव बड़े होंगे, न विष्णु बड़े होंगे। तुम जिस समय ब्रह्म के साथ, आत्मा के साथ एकता का अनुभव करोगे, उस समय अनुभव काल में तुमसे बड़ा कोई नहीं होगा, न शिव, न विष्णु, न ब्रह्मा। ये तो प्रातिभाषिक होंगे, माया कल्पित होंगे, ये औपाधिक होंगे। तुम निरुपाधिक हो गए। बोलो, निरुपाधिक के सामने सोपाधिक बड़ा हो सकता है? महाकाश के सामने मठाकाश बड़ा हो सकता है? अनादिकाल से सिद्ध हुआ महाकाश, कल बनाया तुमने घर और तैयार हुआ मठाकाश, वो बड़ा कहां से होगा महाकाश से? वो तो छोटा ही होगा ना। देशतः छोटा होगा, कालतः छोटा होगा, तो तुम जब महावाक्य के मननिधि ध्यासन के बाद जीव ब्रह्म की एकता का जब अनुभव करोगे उस समय तुमसे बड़ा कोई नहीं होगा। उसका अनुभव कर लेने के बाद भिद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशयाः छीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरे। समस्त अविद्या मूलाविद्या सहित सभी तूलाविद्या नष्ट हो जाएगा और अंतकरण में जितने भी संशय हैं वासना है वह नष्ट हो जाएंगे। और जैसे कि पंचदशी के स्वाध्याय में प्रसंग चल रहा है कि कर्म नष्ट हो जाएंगे, सभी कर्म नष्ट हो जाएंगे, तो पुनर्जन्म के ये जो तीन साधन जो बताई गई है शास्त्र ने, गुरुओं ने, आचार्यों ने, वो तीनों खत्म हो जाएंगे तो फिर तुम्हारा पुनर्जन्म होगा कहां से? अन्यथा ये श्लोक में बता रहे हैं पुनर्जन्म किस किस का होता है। कर्मिणो विनिवर्तन्ते, ये देख लो, कर्मी कर्म करने वाला, कर्मी कर्मयोगी विनिवर्तन्ते, वो लौट कर आएगा। विनिवर्तन्ते माने वो लौट कर आएगा। और उपनिषद में आप लोगों ने पढ़ लिए है कि जाने की क्रम क्या है और आने का क्रम क्या है, पंचाग्नि विद्या में पढ़ी कि नहीं आप लोगों ने? है उपनिषद के पंचाग्नि विद्या जाने का क्रम बता दिया, गीता में ही उल्लेख है। हाँ, धूमो रात्रि तथा कृष्ण षण्मासा दक्षिणायनम, धूमो रात्रि तथा कृष्ण षण्मासा उत्तरायण होगा, सूचक भाई तमें क्या छो, प्रेमपुरी में छो कि क्रॉफर्ड मार्केट में छो? धूमो रात्रि तथा कृष्ण षण्मासा दक्षिणायनम, इस क्रम से जाएगा वो, क्योंकि उसने यज्ञ की, यज्ञ से निकला हुआ जो धुआं है धुएं के साथ मिलकर वह आगे बढ़ेगा। कौन? कर्म करने वाला मरने के बाद। हां, धूम मार्ग बोलते हैं इसको। और रात्रि का अभिमानी देवता और कृष्ण पक्ष के अभिमानी देवता और दक्षिणायन मार्ग से वो जीवात्मा आगे बढ़ेगा। कहां तक? स्वर्ग तक जाएगा। और स्वर्ग जाने वाला देखो अंधेरी रास्ते से जाता है भाई, अंधेरी से जाता है। हाँ, अंधेरी रात धूम मार्ग से जाएगा, धूम मचाता हुआ जाएगा, धूम मार्ग है ना, कर्म करने वाला तो इसी तरह जाएगा ना। अब प्रेमपुरी के आसपास के मलबार हिल के लोग या मरीन ड्राइव के लोग, कोलावा के लोग मरेंगे तो उनको दक्षिण जाना होगा तो क्या अंधेरी होकर जाएंगे? लेकिन यहां बता रहे हैं वो अंधेरी होकर फिर दक्षिण जाएंगे, समझे कि नहीं? अंधेरी रात है, गले पारला मरेगा तो दक्षिण जाना होगा तो अंधेरी होकर जाएगा नहीं, वो भी अंधेरी जाकर फिर लौटना पड़ेगा। बोरी वाली वाला के लिए वो ठीक है, वो तो ऑन द वे है ना अंधेरी। अंधेरी माने कृष्ण पक्ष, दक्षिणायन, दक्षिणायन में दक्षिण भारत नहीं समझ लेना हो, मार्ग का नाम है। उत्तराखंड में दक्षिण भारत आई कि नहीं बोलो, दक्षिण आईन है कि नहीं। कर्मयोगी कर्म करता व्यक्ति उत्तराखंड में मरेगा तो दक्षिणायन में मरेगा तो दक्षिण भारत वहां है कि नहीं। दक्षिण भारत की बात नहीं है, मार्ग दो मार्ग है पैरालर पर, उत्तर मार्ग दक्षिण मार्ग, वो जाएगा स्वर्ग तक। तत्र पुण्यकृताम लोकाम उषित्वा, वहां पहुंचकर अपने कर्मों के द्वारा प्राप्त लोक का भोग का उपभोग करके, तेतम भुक्त्वा स्वर्गलोकम विशालम क्षीणे पुण्य मर्त लोकम वसंती, उसी पर संकेत करते हुए शंकराचार्य जी ने कहा कर्मिणो विनिवर्तन्ते, वो फिर वो धूम मार्ग से आएगा। दूसरा है उपासका, ये कर्म तो नहीं है, यज्ञ याग आदि तो कर्म नहीं कर रहा है, लेकिन हिरण्यगर्भ आदि की उपासना कर रहा है, सगुण उपासना कर रहा है, हिरण्यगर्भ उपासना कर रहा है। वह उत्तर मार्ग से जाएगा। अग्निर शुक्ल अग्निर ज्योति रह शुक्ल सन्मास उत्तरायण, वो उत्तरायण मार्ग से जाएगा। तो जिसकी उपासना कर रहा है कहां तक जाएगा, तो उपास्य लोक तक जाएगा। लेकिन जैसे कि गीता में कहा उपास्य कौन है, ब्रह्मा हिरण्यगर्भ, तो कहां तक जाएगा, तो ब्रह्मलोक तक जाएगा। लेकिन गीता में कह दिया है आब्रह्म भुवनान लोक पुनरावर्तिन अर्जुन, हे अर्जुन ब्रह्मलोक पर्यंत यदि कोई उपासना के माध्यम से जाता है तो वह भी पुनरावर्ती मार्ग है, लौटकर आने का मार्ग है, वहां पहुंचकर भी लौटकर आएगा। तो उसी पर यह संकेत कर दिया शंकराचार्य जी ने इस श्लोक के द्वारा, कर्मिणो विनिवर्तन्ते निवर्तन्ते उपासकाः ज्ञानिनो न निवर्तन्ते इति वेदांत डिंडिमः। ज्ञान मार्ग से जो जाएगा वह न निवर्तन्ते, क्योंकि कर्म का मार्ग है, उपासना का भी मार्ग है, ज्ञान का मार्ग नहीं है, अमार्गगा, ज्ञानी अमार्गगा, वो किसी रास्ते से नहीं चलता है, वो ज्ञानी किसी रास्ते से नहीं चलता है, किसी नियम में नहीं बंधता, किसी के अनुशासन में नहीं रहता, अमार्ग का, इसलिए उसको लौटना नहीं पड़ता है। क्योंकि जाते समय में तीन चीज होनी चाहिए, यदि तीन चीज तुम्हारे पास है तो तुम लौट कर आओगे, और यदि तीन चीज नहीं है तो लौट कर नहीं आओगे, अविद्या काम और कर्म, ये तीन चीज है। तो कर्मी के पास अविद्या काम कर्म रहेंगे, उपासक के पास भी अविद्या काम कर्म रहेंगे, इसलिए वो लौट कर आते हैं, ज्ञानी के पास काम कर्म अविद्या तीनों चीज न रहने के कारण वो लौटते नहीं है। क्यों नहीं लौटते, क्योंकि वह जाते नहीं, वह जाते नहीं है। नतस्य प्राणा उत्क्रामन्ते अत्रैव समवलीयन्ते, ब्रह्म सन ब्रह्माप्यते, वह उसका प्राण उत्क्रमण नहीं करते, कर्मी के प्राण उत्क्रमण करते, उपासक के प्राण उत्क्रमण करते, प्राण उपलक्षित सूक्ष्म शरीर उत्क्रमण करता है, मना षष्ठान इंद्रियाणि प्रकृति स्थान निकर्षति शरीरम यद अवाप्नोति यच्चापि उत्क्रामति स्वर गृहीत्वे तानि संयाति वायुर्गंधा निवासयात, जैसे वायु पुष्प को छूकर पुष्प में से गंध को लेकर जाता है, उसी प्रकार से कर्मी और उपासक स्थूल शरीर में से सूक्ष्म शरीर को लेकर उत्क्रमण करता है। और क्योंकि पुनर्जन्म के साधनों को लेकर उत्क्रमण कर रहा है, तो फिर भी जन्मेगा फिर। और ज्ञानी सबका यही बात करता है, यही नाश करता है, कारण शरीर का ज्ञान से नाश कर देगा, स्थूल शरीर प्रारब्ध के हवाले कर देगा, सूक्ष्म शरीर वासनामय उसका वाद कर देगा, तो फिर लौटने का कोई सवाल ही नहीं है। कर्मिणो विनिवर्तन्ते निवर्तन्ते हे उपासकाः, ज्ञानिनो न निवर्तन्ते इति वेदांत डिंडिमः। ये वेदांत का घोष है, उद्घोष है कि ज्ञानी लौट कर नहीं आता, इसलिए ज्ञानी का पुनर्जन्म नहीं होता। परोक्षा सत्फलम कर्म ज्ञानम प्रत्यक्ष सत्फलम ज्ञानम एवाभ्यसे तस्मात् इति वेदांत डिंडिमः। कर्म का फल परोक्ष है, या कर्म शब्द का अर्थ यज्ञ यज्ञादि ज्योतिषम आदि यज्ञ जो स्वर्ग प्राप्ति का साधन है। हम लोग जो करते हैं ये कर्म नहीं है, वो ये तो चेष्टा है, ये तो क्रिया है, कर्म नहीं है। तुम दैनंदिनी जो कर्म कर रहे हो, जिसको कर्म कर्म हम कर्मयोगी कहते हो ना, ये कोई कर्मयोगी कर्म नहीं है। वेदांति तो इसको कर्म नहीं कहते। क्योंकि उस कर्म को कर्म कहेंगे जिसको कर लेने पर अपूर्व पैदा होता है और अदृष्ट बनता है। और तुम ये कर्म से कोई अपूर्व और अदृष्ट पैदा नहीं होता, इसलिए इसको कर्म ही नहीं मानते हम तो। तुम सुबह उठे और वहां से नहा धो करके चाय ब्रेकफास्ट करके प्रेमपुरी सत्संग सुनने आए, ये क्या कोई कर्म है? इसे क्या अदृष्ट पैदा होगा, अपूर्व पैदा होगा, अदृष्ट पैदा होगा? परोक्ष असत फलम कर्म, यज्ञ यागादि जो कर्म है जिससे अदृष्ट अपूर्व और अदृष्ट पैदा होता है, उसका जो फल है कर्म का, उसका फल परोक्ष है। यहां तुम बड़े भारी जोर शोर से तैयारी करके यज्ञ कर लोगे, उसका फल तुमको दिखने में यहां दिखने में नहीं आएगा। हाय, लेकिन दिखने में नहीं आएगा, क्योंकि वो स्वर्ग में तुम्हारा चर्म चक्षु यहां कैसे देखेगा उसको? तो मरोगे तब वो दिखेगा, स्वर्ग जाने पर दिखेगा। स्वर्ग पहुंचोगे तब जाके प्रत्यक्ष होगा, समझे कि नहीं? मृतलोक में प्रत्यक्ष नहीं होगा। किसका? कर्म का फल। और वो एक तो परोक्ष है, दूसरा असत फल है। परोक्ष असत फलम कर्म, एक तो स्वर्ग में मिलने वाला है, यहां मिलेगा नहीं, दूसरा स्वर्ग में मिल भी जाएगा तो भोग के बाद क्षय होने वाला असत फल है, नाश होने वाला, भोगानंतर नष्ट होने वाला फल है वो। परोक्ष असत फलम कर्म, और ज्ञान का फल, ज्ञान का फल क्या है? अपरोक्ष है, सत्फल है। यदि तुम्हें यहां ज्ञान हो गया तो उसका फल यहीं मिलने वाला है, मरने के बाद नहीं। आज ज्ञान हो गया तो आज ही उसका फल मिलेगा, अभी हो गया तो अभी मिलेगा। इसलिए ज्ञान का फल एक तो प्रत्यक्ष है, अपरोक्ष है, दूसरा सत्फल है, कभी नाश नहीं हो, क्योंकि ज्ञान का फल जो मोक्ष है, ऐसा नहीं कि मोक्ष भोगने के बाद मोक्ष खत्म हो जाएगा, ऐसा नहीं है। इसलिए सत्फल है। तो शंकराचार्य जी कहते यही कारण है, ज्ञानम एव अभ्यसे तस्मात, तस्मात माने इसी कारण से मुमुक्षुओं को ज्ञान का ही अभ्यास करना चाहिए। पुनर्जन्म का हेतुभूत उपासना का भी आश्रय मत लो, पुनर्जन्म का हेतुभूत कर्म का भी आश्रय मत लो, और परोक्ष फल देने वाले कर्मों का भी आश्रय मत लो, प्रत्यक्ष फल देने वाला ज्ञान का ही आश्रय लो। वृथाश्रमोयम विदुषाम वृथायम कर्मिणाम श्रम यदि न ब्रह्म विज्ञानम इति वेदांत डिंडिमा। यदि न ब्रह्म विज्ञानम, यदि ब्रह्म ज्ञान आत्मज्ञान नहीं है तो उसका किया हुआ वृथा श्रमोयम विदुषा, सारे शास्त्रों का तोता रट के हिसाब से रट लो तो भी कोई प्रयोजन सिद्ध होने वाला नहीं है। वो जो तोता रटाई नहीं नहीं रक्षति डुक्रे करणे, उस रटंत से कोई प्रयोजन सिद्ध होने वाला नहीं। वृथाश्रम विदुषाम, विदुषाम माने शास्त्र ज्ञानी नाम, शब्द ज्ञान शास्त्र ज्ञान, पढ़ लो सारे वेद, पढ़ लो सारे उपनिषदे, पढ़ लो सारे पुराणे, पढ़ लो सारे स्मृतियां, लेकिन अपरोक्ष ज्ञान नहीं होता है तो वो सारा परिश्रम बेकार है। वृथायम कर्मिणाम श्रम, कर लो सारे वाजपेय यज्ञ करो, अश्वमेध यज्ञ करो, ज्योतिषोम यज्ञ करो, पुत्रेष्टि धनेष्टि हजारों कर्म कर लो, लेकिन आत्मज्ञान यदि नहीं हुआ है तो सारे कर्म वृथाश्रम। यदि न ब्रह्म विज्ञानम इति वेदांत डिंडिमः, अलम यागैरलम योगैः अलम भुक्तैः अलम धनैः, परस्मिन् ब्रह्मणि ज्ञाते इति वेदांत डिंडिमः। इसकी व्याख्या कल करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ओम।